ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। एक बार एक कंपनी होती है और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही एम्प्लॉयर उस दिन पहुंचते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि आपके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो आपका जो एक कलीग था उसका देहांत हो चुका है और आज उसका अंतिम संस्कार होगा तीसरे माले पर। तो तीसरे माले पर सबको 4 बजे पहुंचना है। तो सब सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति कौन था जो हमारे मार्ग में बाधा था और इसकी मृत्यु हो गई। पहले तो उनको बुरा लगता है कि हमारे ही बीच में कोई था जिसकी मृत्यु हो गई। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनको अच्छा लगने लगता है कि अच्छा हुआ भाई, ये हमारे मार्ग में बाधा बन रहा था और ये चला गया। ये सोचते सोचते वो सब पहुंचते हैं तीसरे माले पर जहां जिम होता है और वहां पर उसका कॉफिन रखा होता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं और कॉफिन खोलते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं, बिल्कुल स्पीचलेस। तो क्या था अंदर? अंदर एक मिरर रखा हुआ था और जैसे ही जो झांकता है उसमें उसमें अपने आप को देखते हैं वो। और उसके बाजू में एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आप खुद ही हो। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है स्पिरिचुअल सेल्फी पर। Now, what is spiritual selfie? Spiritual selfie is self introspection, है ना? हम अपने आप को पूरे दिन भर कितना देखते हैं? अपनी खुशी का जिम्मेदार हम खुद हैं, अपनी सफलता का जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे जीवन में जितनी शांति है उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। सबसे पहले तो हम सेल्फी देखेंगे। आजकल हम लोग बहुत सेल्फी निकालते हैं और सेल्फी लेने में हम सब बहुत एक्सपर्ट है ना? तो कहते हैं कि 93 मिलियन सेल्फी आर पोस्टेड पर डे। उसमें से कहते हैं कि 10 सेकंड में 10 सेल्फी इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है। तो लोग सेल्फी में इतना इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक बीमारी का नाम कहा है जिसका नाम है सेल्फाइटिस, विच इज अ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। जब हमने लोगों को पूछा कि सेल्फी क्यों लेते हैं, हमने हमारे कजिन्स को पूछा सेल्फी क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है सेल्फी लेते हैं, जब हम पोस्ट करते हैं तो लोग उसको लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बिल्कुल सेल्फाइटिस जो बीमारी है ना, अगर कोई 6 to 7 टाइम सेल्फी पर डे लेता है और उसको सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करता है, फिर एक फील गुड फैक्टर होता है जब उसको सब लाइक करते हैं, फिर एक डोपामिन बूस्ट होता है, फिर मन करता है कि वापस सेल्फी पोस्ट करे। तो जब हम देख रहे हैं कि ये एक एडिक्शन बन चुका है, इसीलिए इसको एक मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला है जिसका नाम है सेल्फाइटिस, है ना? तो अब हम देखेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअल सेल्फी। सेल्फी सेल्फी में बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तो अब स्पिरिचुअल सेल्फी में हम क्या क्या पॉइंट्स लेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप सेल्फी लेते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सेल्फी लेने के टाइम पर आप ध्यान देंगे कि हम बहुत स्माइल करते हैं, है ना? कोई भी ऐसे गुस्से वाले फेस से सेल्फी नहीं लेता। स्माइल करेंगे या देखेंगे कि एक फेस पे डिम्पल आ गया क्या, या लिप्स को ऐसी करेंगे, इतना ध्यान देते हुए हम सेल्फी लेते हैं। इसी तरह से व्हाट इज स्पिरिचुअल सेल्फी और उसमें ये स्माइल क्या है, तो दिन भर में हमारी ये स्माइल बनी रहे, दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो लेट्स टेक इट एज सेल्फी। सेल्फी वर्ड को ही देखते हैं तो सबसे पहले एस, एस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान में रहना। अब दिन भर में देखते हैं कि हमारी ये स्माइल कैसे मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम उसको बड़ी दिल पे लगाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाता है। अब सोचिए ऐसे टाइम पर अगर कोई सेल्फी निकाले तो कैसा आएगा, दुखी चेहरा आएगा ना? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना पूरे दिन भर, किसी के बोलने से हम वैसे बन नहीं जाते। कभी कभार कोई कहता है ना कि तुम तो बड़े बुद्धू हो, तो क्या किसी के कहने से हम बुद्धू बन जाते हैं? नहीं, किसी के कहने से नहीं। एक दिन क्लास में हमारे डिस्कशन हो रहा था दुआओं पर, ब्लेसिंग्स पर और बदुआओं पर। तो किसी ने कहा कि बदुआएं बहुत लग जाती है, तो बदुआएं थोड़ी लग जाती है। ऐसे तो कोई सेलिब्रिटी है या कोई बहुत बड़े पद पर है, उनके लिए तो पूरी दुनिया बोलती है, तो क्या उनके पास पहुंचती है ये बदुआएं? बिल्कुल भी नहीं। जिस वक्त हम सोचते हैं नेगेटिव या नफरत की भावना से तो ये चीजें हमारे पास आती है, हम आह्वान करते हैं उन चीजों का। लेकिन अगर हमने बहुत प्यार के वाइब्रेशंस दिए तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेंटेन करना है सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरे दिन भर, अपनी खुशी को मेंटेन करने के लिए अपने सामान को बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है ई एस ई, ई स्टैंड फॉर एंथुजियाज्म। दिन भर में जो भी हम कर्म करते हैं बहुत एंथुजियास्टिकली अगर हम करते हैं तो कितने खुश रहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए फेस्टिवल्स का। फेस्टिवल्स के टाइम पर हम जब प्रोग्राम करते हैं, कुछ बनाना है, ऐसे लोगों को बुलाना है, ये लिस्ट बनाते हैं, ये भोजन बनाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, ऐसे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होंगे, कितनी एंथुजियाज्म से पूरा दिन काम करते हम, लेकिन फिर भी थकते नहीं, राइट? इसी तरह से जब हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, या किसी का काम ऑपरेशन थिएटर में है, या किसी का काम रिसेप्शन पे है, लेकिन उतने एंथुजियाज्म से अगर हम काम करेंगे ना, और उस टाइम पर अगर कोई हमारी सेल्फी ले तो कितनी बढ़िया आएगी। इसीलिए ई फॉर एंथुजियाज्म, दिन भर एंथुजियाज्म को मेंटेन करना। एल, लेट्स टेक इट एज एल, एल स्टैंड्स फॉर लव। जो आत्मा प्यार देती है वो बहुत भरपूर होती है। प्यार जो देता है ना उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती है। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते हैं तो हम खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कभी कभार मूड अपसेट हो जाता है तो हम अपनी एक सेल्फी निकाल के रखते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो भी एक सेल्फी निकाल के रखते हैं। आप भी ऐसे करके देखना और दोनों को कंपेयर करना, आप खुद जानेंगे कि जो सेल्फी में हम बहुत खुश है, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं सबके साथ, वो सेल्फी और वो मुरझाया हुआ फूल, जैसे कि वो दुखी वाला चेहरा कैसे लगेगा ना। तो जो इंसान प्यार देता है वो भरपूर है, और वो उसके चेहरे से झलकता है, और वो स्पिरिचुअल सेल्फी है, वो स्पिरिचुअलिटी है, एंड दैट इज व्हाट इज लव। तो एल इज फॉर लव। नाउ एफ, व्हाट इज एफ? एफ इज फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं दूसरों को फॉरगिव कर देना। हम कौन होते हैं दूसरों को फॉरगिव करने वाले, है ना? अगर हम बोलते हैं कि अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं होंगे, हम पीसलेस होंगे, लेकिन सबसे पहले फॉरगिव करना है टू सेल्फ। जब लोगों की बातें हम इतना पकड़ के रखते हैं तो दर्द में कौन है? वो कि हम हैं। इसलिए सबसे पहले फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ। जैसे ही हमने अपने चित्त से उस बात को हटा दी, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस प्योर हो जाते हैं उस आत्मा के लिए, एंड ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस हो जाता है। इसलिए एफ इज फॉर फॉरगिवनेस, एंड ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है फॉरगिवनेस। इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देन फॉरगिवनेस। देन कम्स आई। आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस अपने आप पर डिपेंड करना। देखिए एक सेल्फी जिसमें आप भीख मांग रहे हो दूसरों से कि आप खुशी दे दो, आप सुख दे दो, आप प्रेम दे दो, आप शांति दे दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो लेके चले दूसरों के पास कि प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मेरी सिचुएशन में मुझे बता दो क्या करना है। तो दिस इज डिपेंडेंसी। ये सेल्फी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन जो इंसान बहुत इंडिपेंडेंट है, जो अपने बल पर खड़ा है, जिसका खुद का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, दैट इज अ वेरी गुड सेल्फी, है ना? सो दैट स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस इंडिपेंडेंस। एंड लास्ट इज ई। नाउ ई इज व्हाट? जब ये सब करेंगे तो ई इज एक्टसी। एक्टसी मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस कब मिलती है? जब हम आत्माएं परमात्मा को जानती है, परमात्मा को अपने साथ जोड़ती है, है ना? जो प्यार का सागर है, जब वो प्यार के सागर की हेल्प हमको मिलती है तो जिंदगी जो है वो बहुत खुशहाल बन जाती है। तो दैट इज एक्टसी। दिस इज व्हाट इज S E L F I E. So S is self respect, E is enthusiasm, L is for love, F is for forgiveness, I is for independent, and E is for ecstasy. So पहला हो गया smile. Second point लेते हैं। Selfie जब लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा बहुत different angles से लेते हैं लोग selfie. कोई right side से, कोई left side से, है ना? कोई कहते हैं मैं right से बहुत अच्छी दिखती हूँ इसलिए मैं right से selfie लेती हूँ, कोई left से लेते, कोई दूर रख के लेते, तो डिफरेंट एंगल से लोग सेल्फी लेते हैं। इसी तरह से दिन भर में अपने आप को चेक करना है अपने डिफरेंट एंगल्स। ये क्या होंगे? हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, दैट इज वन एंगल। उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? सेकंड, हमारी फैमिली। थर्ड, हमारे फ्रेंड सर्कल। नाउ डिफरेंट एंगल्स इन स्पिरिचुअल सेल्फी, ये क्या हो सकता है? तो देखिए थ्री सी है, तीन सी है। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं, या अगर हम कंपटीशन की भावना रखते हैं तो आप देख लीजिए चेहरा कैसा होगा, है ना। क्रिटिसिज्म करने वाला इंसान जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, जो कंपटीशन की भावना रखता है, उसमें बहुत जेलसी होती है और जेलसी में इंसान खुद अंदर बहुत जलता है। वो सोचता है कि मैं इसके आगे जाऊं तो मुझे खुशी होगी, तो मैं ठीक रहूंगा, तो मैं पीसफुल रहूंगा। राइट नाउ जेलसी इज लाइक अ सर्कल। हम अगर किसी और के आगे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई और आगे है हमारे। इस दुनिया में जरूर कोई ना कोई है जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो हमसे ज्यादा खूबसूरत है ना। तो जेलसी इज लाइक अ सर्कल, आगे जाओ देखो कि और कोई है, तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता इंसान। तो इस 3C को हमको अपनी लाइफ से डिलीट करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का जो एंगल है, स्पिरिचुअल सेल्फी का जो एंगल है, वो बहुत ब्यूटीफुल हो। तो इस 3C को हमको डिलीट करना होगा। और कौन से 3C को हम अपनाएंगे? तो दैट इज केयरिंग, कंपैशन एंड कोऑपरेशन। जब हम लोगों की केयर करते हैं तो कितना प्यार होता है, कितनी खुशी मिलती है, तो सोचिए वो सेल्फी कैसी होंगी। सेकेंड इज कंपैशन, कंपैशन फॉर सेल्फ, देन कंपैशन फॉर अदर्स। ऐसी आत्माओं को सब लाइक करते हैं जो बहुत कंपैशनेट है ना। एंड तीसरा सहयोगी, कोऑपरेशन। जब हम एक यूनिटी में काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, आप देखिए कि वो सेल्फी, वो स्पिरिचुअल सेल्फी कितनी ब्यूटीफुल होंगी। कुछ दिन पहले ऐसे हुआ, हमारे पास एक पेशेंट की रिलेटिव आई है ना। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट होती है डायलिसिस यूनिट में। वो आंटी हमारे पास आई और कही कि हमको मॉर्निंग शिफ्ट ही चाहिए, और हमने कहा है नहीं आंटी। वो टेक्नीशियन के पास गई, वहां पर उसने लड़ी, वो बहुत बहुत असंतुष्ट, सब जगह जाके असंतुष्ट। तो अब ऑब्वियसली वो सीनियर के पास गई, हमारे सर के पास, और फिर उन्होंने बड़े प्यार से बात की, संतुष्ट हुई, चली गई। उसको मॉर्निंग शिफ्ट मिली नहीं क्योंकि सब फुल था। तो हमारे सर हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग के पास टाइम नहीं है ना शिफ्ट में उसको देने के लिए, तो बस एक ही चीज करनी है आपको, आपको सिर्फ प्यार से बात करनी है और केयरिंग एटीट्यूड से बात करनी है। भले आप लोग मत दो उसको, नहीं है आपके पास टाइम वो शिफ्ट में, लेकिन इंसान को प्यार चाहिए। तो जस्ट इमेजिन अगर हम उस वक्त इस भान से बात करते, केयरिंग एटीट्यूड से, प्यार से बात करते, तो वो सेल्फी उसकी भी और हमारी भी बहुत ब्यूटीफुल होती। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, डिफरेंट एंगल्स इन स्पिरिचुअल सेल्फी। दूसरा है डिफरेंट शेड्स। कई लोग सेल्फी लेते हैं उसके बाद बहुत सारे एप्स यूज करते हैं उसको अच्छा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नोज पे शेड्स करते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, और डिफरेंट शेड्स करने के बाद वो सोचते हैं अब ये सेल्फी ठीक है, अब इसको पोस्ट करना चाहिए। कई प्लास्टिक सर्जन के पास लोग जाते हैं नोज की प्लास्टिक सर्जरी कराने, और कहते हैं कि हमारी नोज की प्लास्टिक सर्जरी करानी है। सर्जन पूछते हैं क्यों, तो वो कहते हैं कि सेल्फी जब लेते हैं ना तो नाक बहुत बड़ी आती है, इसीलिए हमको प्लास्टिक सर्जरी करनी है इस नोज की। तब स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, ये स्पिरिचुअल सेल्फी में ये जो शेड्स है, ये जो नोज है, ये है अहंकार की निशानी। तो इस ईगो को जब हम खत्म करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल सेल्फी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, है ना। जैसे हम अगर सोचे कि मैं अपने गुस्से को कम कर दूं, इसको खत्म कर दूं, मेरे में बहुत अटैचमेंट है, मैं इसको खत्म कर दूं, मेरे में जेलसी है, मेरे में ग्रीड है, इसको खत्म कर दूं। तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, रावण के क्या दिखाते, 10 सिर दिखाते। रावण के 10 सिर पर मारता है राम, लेकिन फिर भी रावण मरता नहीं। फिर क्या होता है, एंड में वो उसकी नाभि पर मारता है और सारे 10 सिर गिर के खत्म हो जाते हैं। तो ये नाभि क्या है, ये है अहंकार, ये है हमारे में ईगो। तो रावण जो हमारे अंदर है और ये जो 10 विकार दिखाते हैं, ये जब खत्म कब होंगे, जब इस ईगो को, इस अहंकार को हम खत्म करेंगे, तब हमारे अंदर का रावण खत्म होगा और तब हमारी सेल्फी बहुत ब्यूटीफुल होगी। अहंकार आता है हमारे रिलेशनशिप्स में भी, है ना। कभी हमारे से किसी का अच्छा व्यवहार नहीं होता है और बातचीत बंद हो जाती है, तो हम बहुत दिनों तक रुकते हैं कि सामने वाला आए फिर हम बात करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो काम कर रहा होता है। तो हमारी दादी हमें सिखाती थी कि अगर रिलेशनशिप्स में हार्मनी चाहिए तो हार मान लो तो हार्मनी हो जाएगी। तो वो पहला कदम उठाना होता है, उस ईगो को मारने के लिए हमको पहला कदम उठाना पड़ता है और अपने ईगो को नहीं जीतने देना है वहां पर। तो जब हम पहला कदम उठाएंगे ना तो ये ईगो खत्म हो जाता है। और फिर देखिए ना, फैमिली की सेल्फी अगर लेंगे तो कितनी ब्यूटीफुल आएंगी। फोर्थ पॉइंट है फोटोशॉपी, है ना। कई लोग सेल्फी लेते हैं, कई लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर उसकी एडिटिंग करते हैं, राइट। तो दिन भर में कभी कभार हम ऐसा होता है कि सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर देते हैं, फिर घर आके हमको ऐसा लगता है कि हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, देखिए कि हम ऐसा कोई था, ऐसा कुछ था कि हम अलग तरीके से इसमें रिएक्ट कर सकते थे या अलग तरीके से इसमें रिस्पॉन्ड कर सकते थे। जो भी सिचुएशन है उसको अपने सामने लानी है। एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं SOS। SOS stands for stand back, observe and steering। तो stand back means पूरी सिचुएशन को देखना, अपने व्यवहार को देखना, सामने वाले के व्यवहार को देखना, observe। Then steer, उसके पहले कौन सी ऐसी विशेषता है या कौन सा ऐसा वैल्यू है या वर्चू है जो अगर मैं इस सिचुएशन में यूज करती तो सिचुएशन कुछ और होती, रिलेशनशिप नहीं बिगड़ते, वर्क प्लेस पे अगर कोई झगड़ा हुआ तो नहीं होता, है ना। कभी कभार दूसरों के अवगुण देख के हम अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं। दादी जानकी कहती थी, अवगुण दूसरे के, प्रॉब्लम हमारी, है ना। कोई अगर क्रोध से बात कर रहा है तो हम भी आवेश में आकर बात करते हैं, हम भी रिएक्ट करते हैं। तो SOS टेक्निक को यूज करना, तो दैट इज फोटो एडिटिंग। तो इसमें स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयरिंग, तो किसी भी एक वैल्यू को लेना, बैठना बहुत शांति से कि फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में अगर मेरे में धैर्यता होती तो क्या हो सकता था, अगर मेरे में पीस होता, कामनेस होती, तो क्या ये क्राइसिस रुक सकती थी। सो दैट इज फोटो शॉपी एडिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फी में फोटो बॉम्बिंग। नाउ व्हाट इज फोटो बॉम्बिंग? आपने देखा होगा कभी हम फोटोग्राफ निकाल रहे होते हैं तो पीछे से कोई आके ऐसे करता है तो फोटोग्राफ खराब हो जाता है, या किसी ने आके हमारे सिर पे ऐसे दो रख दिए हाथ तो फोटो खराब हो सकता है। तो दैट इज फोटो बॉम्बिंग, मीन्स फोटो को खराब कर देना। इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ, नाउ व्हाट दिस स्पिरिचुअल लाइफ टीचेस अस, फोटो बॉम्बिंग। कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमारी सेल्फी को खराब करता है, कोई ना कोई ऐसा एक दो लोग होते हैं जो हमारे पेपर्स लेते हैं लाइफ में। तो उस टाइम पर क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं प्रकृति का। देखिए कमल का फूल कहाँ खिलता है? कमल का फूल जो होता है लोटस, वो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में रहते हुए भी कमल का फूल, कीचड़ उसको टच नहीं करता और वो बहुत सुंदर लगता है कमल का फूल। तो वो हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे किसी का व्यवहार कैसा भी हो, बट आई रिमेन डिटैच। दूसरा देखिए गुलाब का फूल, गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, लेकिन गुलाब हमेशा खुशबू देता है, गुलाब की रंग कम नहीं होती कांटों के बीच में रहते हुए भी। तो गुलाब का फूल भी हमें सिखाता है। इसी तरह से फोटो बॉम्बिंग ना, तो बहुत सारे थॉर्न्स लगाने लोग आते हैं, है ना, तो लेकिन उनके कांटों से हम क्यों मुरझा जाए। तीसरा है सूर्यमुखी, देखिए सनफ्लावर, जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बड़ा खिलावा होता है। इसी तरह से ज्ञान का प्रकाश जब हमारे जीवन में होगा तब दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर हमारे पास विजडम है, नॉलेज है, तो वो हमें एक फूल की तरह रखती है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल सेल्फी है वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। कभी कभार फोटो बॉम्बिंग हम हमारी खुद कर देते हैं, है ना, हम हमारी सेल्फी को खुद खराब कर देते हैं। कैसे? पर चिंतन, पर दर्शन, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन पुरानी बातों को अपने चित्त पर लाते हैं, उसको बार बार सोचते हैं, है ना। ये भी एक है जो फोटो बॉम्बिंग करता है हमारी तरफ से, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारी सेल्फी को खराब कर देता है। पर चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों किया, अगर ये होता तो, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब फोटो बॉम्बिंग है अपनी ही तरफ से, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फी को खराब करने के लिए। तो ये अवॉइड करना है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, कई टीनेजर्स को हमने पूछा कि आप सेल्फी क्यों लेते हो, तो कहा एवे ऐसी फीलिंग गुड फैक्टर, मींस वो लेते हैं सेल्फी क्योंकि हमको अच्छा लगता है इसलिए हम सेल्फी लेते हैं, तो फीलिंग गुड फैक्टर। अब देखते हैं स्पिरिचुअल सेल्फी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फीलिंग गुड अगर पूरा दिन भर करना है तो कैसे करें? इतनी सारी चीजें जो हमने बोली, इन सब को अगर हम एक पॉइंट में संभालें, तो अगर हम एक दूसरे को एज अ सोल देखे, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, उनके पद, पोजीशन, ये मेरा ये फैमिली मेंबर है, इसने ऐसे कर दिया, ये मेरे बॉस है, इन्होंने ऐसे कर दिया, ये मेरे कलीग है, इन्होंने ऐसे कर दिया, ये सब अगर देखेंगे तो नो फीलिंग गुड फैक्टर। लेकिन अगर हम हर एक को आत्मा देखेंगे और उनके वो सात गुणों में देखेंगे, जो आत्मा के सात गुण है, जो है लव, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, तो जब हम उनको इन सात गुणों में देखेंगे तो हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में इन सात गुणों के साथ है, राइट? तो फिर चाहे दिन भर वो कुछ भी करे, लेकिन ओरिजिनल में तो वो पीसफुल है, हैप्पी है, ब्लिसफुल है। अब वो परवश है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो फीलिंग गुड को पूरे दिन भर बनाए रखने के लिए हर एक को आत्मा देखना। कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई, हमारे पास सेंटर पर भी कुछ बच्चे आए थे कल्चरल प्रोग्राम करने, कोई सुदामा बना तो कोई कृष्ण बना तो कोई राधे। अब राधे भी जो बनी तो तीन चार राधे बनी, दो तीन कृष्ण बने, एक द्वारपाल बना, एक सुदामा बना। तो अब आप देखेंगे कि ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे, लेकिन है तो सभी आत्मा, अपने ओरिजिनल नेचर में सबके पास सात गुण है। अब देख लीजिए ना, चार राधे बनी, वैरायटी, चारों के डांस अलग थे, चारों की एक्टिंग अलग थी, स्किट अलग थी, बोलने का तरीका अलग था। तो ये तो वैरायटी है ना, हमारे आजू बाजू भी जो लोग है ये वैरायटी लोग है, वैरायटी आत्मा के वैरायटी संस्कार है। लेकिन ओरिजिनल नेचर में हर आत्मा पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, पावरफुल और प्योर है। तो फीलिंग गुड फैक्टर को बनाए रखने के लिए हर एक को आत्मा देखना। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल सेल्फी में। जब लोग सेल्फी निकालते हैं ना तो कुछ लोग हाईलाइट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने नई वॉच खरीदी तो वो वॉच पहनेंगे, वॉच की निकालेंगे सेल्फी वॉच के साथ और उसको पोस्ट करेंगे। किसी ने नई रिंग पहनी तो रिंग को पोस्ट करेंगे, उस पे फोकस करके फिर सेल्फी भेजेंगे, स्नैपशॉट्स भेजते हैं अपने नए शूज के। तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होना चाहिए? तो ये है नवीनता। लाइफ में कुछ न्यूनेस होनी चाहिए। देखिए, अभी हम 4 महीने से, 5 महीने से अपने अपने घर में बैठे लॉकडाउन में, सब बोर हो जाते हैं ना, एक ही रूटीन फॉलो करना, वही सुबह में उठना, वैसे ही वर्क पे जाना और आना। अगर कोई न्यूनेस नहीं है तो हम बोर हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे, पहले हम N95 मास्क पहन रहे थे, बहुत ध्यान रख रहे थे, अब हम देखते हैं लोग अपने जो ड्रेस होती है ना उसकी मैचिंग मास्क पहन के आ रहे, ब्लू तो ब्लू मास्क, व्हाइट तो व्हाइट मास्क, नहीं तो चेक्स में मास्क। लोगों ने इसमें भी न्यूनेस ला दी, इसमें भी वैरायटी ला दी। तो स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ना कुछ न्यूनेस लाना, कुछ ना कुछ एफर्ट करना। तो फॉर एग्जाम्पल आज ये वीक में हम इस वैल्यू पे काम करेंगे, जैसे कि मेरे में कामनेस नहीं है तो लेट्स वर्क ऑन कामनेस, लेट्स रीड ऑन कामनेस, व्हाट इज कामनेस। सपोज पेशेंस, मेरे में धैर्यता की कमी है तो धैर्यता कैसे आनी चाहिए, धैर्यता क्या है। लव, प्योरिटी, ऐसे कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं और हर वीक उस वैल्यू पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपने सुना होगा ब्रह्मा कुमारीज में ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है ना, आपके लिए ये भी नया होगा, हमने भी पहले जब किया था तो हमारे लिए भी नया था, है ना। तो उसमें ट्रैफिक कंट्रोल में मोबाइल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो हर घंटे 59 मिनट्स के बाद बजता है, 1 मिनट के लिए एक गीत बजता है बहुत पीसफुल। उस टाइम पर हम बस अपने आप को परमात्मा की याद में बैठते, उससे कनेक्ट होते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट 1 आवर बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारी चार्जिंग हो गई। तो दिस इज समथिंग न्यूनेस, ऐसे कुछ भी नवीनता लाना अपने स्पिरिचुअल एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो दैट इज हाइलाइटिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। नेक्स्ट थिंग इन सेल्फी इज गुड लाइट सोर्स। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम ध्यान दे रहे हैं ना कि यहाँ पे गुड लाइट सोर्स है तो सेल्फी अच्छी आएगी, फोटोग्राफ अच्छा आएगा, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। वैसे ही स्पिरिचुअल सेल्फी में व्हाट इज लाइट, जैसे हम कहते हैं लाइट मींस नॉलेज, ज्ञान, एंड लाइट मींस रिमेनिंग लाइट। अगर हम हल्के रहते हैं, अगर हम लाइट रहते हैं तो सेल्फी बहुत अच्छी आएंगी, स्पिरिचुअल सेल्फी बहुत प्यारी आएंगी। लाइट इज नॉलेज। आपने देखा होगा गाय बहुत सारा खाती है और फिर उगारती है। गाय एक ऐसा जानवर है जो अपने फूड को माउथ में वापस रीगर्जिटेट करता है और उसको चू करके, री चू करके, री स्वॉलो करने की क्षमता है उसमें। तो जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ते हैं तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ज्ञान को भी उगारना है पूरा दिन भर। जब मॉर्निंग में आप स्पिरिचुअल स्टडी करते हो तो आपको गाय की तरह इस ज्ञान को पूरे दिन भर उगारना है। कहते हैं कि गाय 8 घंटा कम से कम इस भोजन को उगारती है, और ये निशानी है कि जो गाय उगारती है वो हेल्दी है। इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज को भी पूरे दिन भर चर्न करना है। पूरे दिन भर जब हम चर्न करेंगे तो दैट इज गुड लाइट सोर्स इन आवर लाइफ। एंड फिर दिन भर में कभी सेल्फी निकालो हमारी स्पिरिचुअल सेल्फी, तो वो बहुत अच्छी होंगी। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल सेल्फी में बैकग्राउंड। आप देखोगे सेल्फी निकालते टाइम हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, है ना। सेल्फी बहुत लोग ऐसे निकालते हैं कि पीछे का पैलेस आ जाए, पीछे का रॉक आ जाए, ये सूर्य है वो आ जाए। बहुत ध्यान देते हैं हम बैकग्राउंड पे कि बैकग्राउंड क्या है। एक तो हम अपने आप पे ध्यान देते हैं और एक है कि हम बैकग्राउंड पे ध्यान देते हैं। तो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फोटो खींचो सेल्फी खींचो। नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअल बैकग्राउंड? बैकग्राउंड जो हमारे साथ रहता है, संग। तो किन चीजों का हम संग करते हैं पूरा दिन भर? अब संग सिर्फ लोगों से नहीं जोड़ेंगे हम, लेकिन संग जैसे कि मोबाइल फोन पूरा दिन भर हमारे साथ रहता है, तो क्या हम पढ़ते हैं उस पे, क्या देखते हैं हम, क्या सुनते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट डिसाइड्स योर स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि जो हम पढ़ते देखते सोचते वो हमारा व्यक्तित्व बनते जा रहा है। तो ऐसी चीजों का संग करना है जो हमें श्रेष्ठ बनाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं रमजान, रमजान में हम क्या करते हैं? टीवी बिल्कुल नहीं देखते, वाया चीजें नहीं सुननी है, नहीं देखनी है, नहीं पढ़नी है, चीजों का परहेज रखते हैं। जब उपवास करते हैं तो ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इन चीजों का परहेज करते हैं, मीन्स इन चीजों का संग नहीं करते हैं। जब इन चीजों का संग नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध होती है। जब बुद्धि बहुत शुद्ध होती है तो परमात्मा से जुड़ती है और फिर वो रूहानियत आप में आती है और फिर वो सेल्फी जो होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी। लास्ट पॉइंट हमारा है सेल्फी जब हम लेते हैं ना, तो कभी कभार हम एक इंडिविजुअल सेल्फी लेते हैं। मैं अपनी एक इंडिविजुअल सेल्फी ले सकती हूँ, या तो हम लाइन में खड़े होते और एक साथ सेल्फी लेते। एक होती है ग्रुप सेल्फी। कहीं हमने एक कोट पढ़ा था, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टूगेदर। आप देखेंगे हम सोचते हैं कि चलो 5-स्टार होटल में जाए, JW मैरियट में जाए और चाय पिए, लेकिन मजा हमें जब आता है जब हम नुक्कड़ पे चाय पीते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हम सोचते बड़ी बड़ी कार्स में बैठे, मर्सिडीज BMW, लेकिन हम अपना दिल खोल के तभी बात करते जब हम किसी के साथ लॉन्ग वॉक पे जाते हैं। हम सोचते कि ब्रांडेड चीजें खरीदे, हम ये खरीदे वो खरीदे, लेकिन मजा तो तब आता है जब अपना नाइट सूट पैजामा पहन के हम बहुत कंफर्टेबली सोते हैं। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी दो चीजें हैं, एक है इंडिविजुअलिटी, एक है कम्युनिटी। पुरुषार्थ जो करना है, एफर्ट जो करना है, वो आपको अपने आप से करना है, खुद से करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, दैट इज योर इंडिविजुअल एफर्ट। बट स्पिरिचुअलिटी नेवर टीचेस अस कि कम्युनिटी या फैमिली को छोड़ के अलग से जाके बैठ जाओ, या सफेद कपड़े पहन लो, या ऑरेंज कपड़े पहन के माउंटेन हिल्स पे बैठ जाओ और ध्यान करो। नो, स्पिरिचुअलिटी नेवर टीचेस दैट। स्पिरिचुअलिटी इज अपने घर गृहस्थ में रह के स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना, और जब हम सबके साथ रह के ये सारी चीजें करेंगे तब हमारी सेल्फी बहुत अच्छी होंगी। आप खुद सोचिए ना, जब हम एक इंडिविजुअल सेल्फी लेते हैं और जब हम एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं, कौन सी अच्छी लगती है? ये तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सी सेल्फी अच्छी है। दोनों सेल्फी अच्छी है, लेकिन ग्रुप सेल्फी में एक और मजा है, कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, सबके साथ चलना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि सबको छोड़ के अलग जाके बैठ जाओ। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे स्पिरिचुअल सेल्फी में। ये सारे पॉइंट्स को हम समराइज करते हैं, तो पहले हमने देखा स्माइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फी में, स्पिरिचुअल सेल्फी में भी। सेकेंड पॉइंट हमने देखा डिफरेंट एंगल्स से लोग सेल्फी लेते, तो व्हाट इज स्पिरिचुअल एंगल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल सेल्फी इन दैट। थर्ड हमने देखा लोग सेल्फी लेते हैं तो डिफरेंट शेड्स यूज करते हैं, डिफरेंट एप्स यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करने, तो अपनी नाक को शेड करते, उसमें हमने देखा ईगो को। चौथी पॉइंट हमने देखी फोटोशॉपी, फोटो एडिटिंग। कोई सिचुएशन हो गई, अब लेट्स एडिट इट, कि कोई अलग तरीका था इसमें रिस्पॉन्ड करने का, तो SOS टेक्निक जैसे हमने डिस्क्राइब किया, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयरिंग. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखी, फिफ्थ पॉइंट, फोटो बॉम्बिंग. फोटो बॉम्बिंग, कोई हमारी सेल्फी को खराब कर सकता है या तो हम खुद खराब कर सकते हैं, और इसको हम खराब नहीं होने देंगे. इसके पॉइंट्स हमने देखे. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट हमने देखी, फीलिंग गुड फैक्टर. इसीलिए हम सेल्फी निकालते हैं. तो फीलिंग गुड फैक्टर के लिए हमने देखा दूसरों को आत्मा देखना. दिन भर में जब हम दूसरों को आत्मा देखेंगे तो फीलिंग गुड फैक्टर. सेवन पॉइंट हमने देखी, हाईलाइटिंग न्यू थिंग्स. लोग सेल्फी निकालते हैं, अपनी वॉच को हाईलाइट करते हैं, अपनी रिंग को हाईलाइट करते हैं, इसी तरह से न्यू थिंग्स को. तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी न्यूनेस लाना, तो दैट इज न्यूनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. नेक्स्ट हमने देखा लाइट सोर्स. गुड लाइट सोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फी. तो यहाँ हमने देखा रिमेनिंग लाइट एंड नॉलेज लाइट. इसमें हमने एग्जाम्पल देखा जैसे कि गाय का. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फी में. तो व्हाट इज अवर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड एंड किन चीजों का हमें संग नहीं करना है, तब हमारी स्पिरिचुअल सेल्फी बहुत ब्यूटीफुल होंगी. एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा कि सेल्फी या तो इंडिविजुअल निकालते हैं या तो ग्रुप सेल्फी निकालते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि ग्रुप सेल्फी एंड इंडिविजुअल सेल्फी. तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जैसे हमने देखा, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टूगेदर. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे स्पिरिचुअल सेल्फी के. तो उस दुनिया में तो लोग कहते हैं कि इतने सारे सेल्फी निकाल के अगर कोई पोस्ट कर देता है तो दैट इज अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव मेंटल डिसऑर्डर. लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो हम कहेंगे कि दिन भर में हम बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सेल्फी निकाले, इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इतना अटेंशन, इतनी स्माइल हमारे फेस पे, इतने एंगल्स के साथ, तो हमारी सेल्फी, तो हम इस बीमारी के तो शिकार हो ही जाए और हम सबको स्पिरिचुअल सेल्फाइटिस हो ही जाए. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
टोबैको एंड अल्कोहल आर टू मेजर एडिक्शंस which cause cancers in our country and across the world. Tobacco is either smoked or used in smokeless form, such as gutkha or tobacco, retained in the oral cavity for a long period of time, and that causes cancers, as seen in the diagram of the effects of tobacco smoking. Oral, laryngeal, lung, pancreatic and urinary bladder cancers. While diagram on alcohol abuse shows that it is responsible for mouth, throat, larynx, esophagus, liver, breast and bowel cancers. The risk is higher for cancers of the oral cavity, larynx and esophagus because these tissues come in direct contact with the tobacco and alcohol when a person chews or smokes tobacco and or drinks alcohol. Cancers occur with greater frequency in men with increasing age and those in the lower socio-economic strata of the society. Tobacco products, especially the bidis in our country, are smoked by over 10 crore and cigarettes only by 2 crore, contain 70 known carcinogens that are associated with an increased risk of developing cancer. The risk of developing these cancers is higher if a person also drinks heavily, particularly over a long period of time. Why alcohol increases cancer risk? The increased risk is related to chemicals that damage DNA of the healthy cells. Ethanol is the primary part of the alcoholic beverages, and acetaldehyde, when alcohol is broken down in liver by enzyme alcohol dehydrogenase. It is a major toxic metabolite, more potent than ethanol, and mediates mutagenic effects of alcohol in the liver. Alcohol use can damage the liver, leading to inflammation, hepatitis, and scarring, cirrhosis, increasing the risk of liver cancer. Alcohol changes the way a woman's body metabolizes hormones, which increases the amount of estrogen in the blood, resulting in increased risk for breast, ovarian, and uterine cancers for premenopausal women and those taking hormonal replacement therapy after menopause. Drinking alcohol adversely affects body's ability to absorb important nutrients, including vitamins A, C, D, E, and folates. Alcohol can cause increase in weight, which in turn increases cancer risk. In the past, to limit the number of drinks to lower alcohol-related risk, one drink a day for women and two drinks a day for men were considered permissible. However, Chief Medical Officer of UK found no safe level of alcohol consumption. In other words, recommendation is that alcohol should be totally avoided. Persons receiving treatment for cancer, such as radiation or chemotherapy, need to avoid alcohol that may worsen the treatment-related soreness of the mouth and may increase the risk of dehydration. Tobacco is made from the leaves of tobacco plants and contains nicotine, which is an addictive drug. When a person smokes tobacco in cigarettes, cigars or pipes, he inhales toxic and cancer-causing chemicals such as ammonia used in floor cleaners, arsenic used in white ant poison, carbon monoxide, dangerous gas in car exhausts, hydrogen cyanide, a poisonous gas used in gas chambers, naphthalene used in mothballs, nicotine used to kill insects, and tar, a sticky substance used to surface roads, which directly damage upper airway and lungs, resulting cancer in long run. Cancer is a generic term for a group of diseases that can affect any part of the body. Defining features of cancer are rapidly dividing abnormal cells that invade the organ of origin and spread through lymphatics to regional lymph nodes. For example, a cancer which originates in the breast would infiltrate the breast and then reach via lymphatic channels depicted green in this slide to lymph nodes in the armpit or axilla, finally to spread through bloodstream to distant organs such as lungs, liver, brain or bones. This is referred to as a distant metastasis. This tendency to spread to distant organs is a major cause for failure of treatment, leading to fear of death and general perception that cancer is an incurable fatal disease despite treatment. There will be 16 million new cases of cancer in 2020, and it is the second leading cause of death globally, responsible for an estimated 10 million deaths in 2020, projected to cause 13 million deaths in 2030. 70% of deaths from cancer occur in countries with low and middle income economy and is expected to rise to 80% in 2030. About a third of all cancer deaths could be prevented by reducing tobacco and alcohol use, eating healthy diet and exercising more. If current trends continue, tobacco will kill more than 8 million people by 2030 worldwide each year, most of them in developing countries with low income and poor nutrition. Tobacco is the most important risk factor for cancer, responsible for 22% of cancer deaths. Lung cancer kills more people than any other cancer, a trend that is expected to continue till 2030, unless efforts for global tobacco control are greatly intensified. USA has been able to steadily reduce deaths due to lung cancer over the last 25 years at the rate of 3% per year to 5% per year in men and from 2 to 4% in women by stopping smoking and advances in early detection and treatment. Tobacco is a risk factor for premature death globally. Alcohol kills 3 million due to cancer, cirrhosis and heart disease. Cancer is a challenge to mankind and predicted to be a number one cause of death in the world by 2030. It causes epigenetic alteration of epithelial cells and inhibits systemic immune functions of the body. Toxic metabolites also cause oxidative stress on the tissues and induce squamous cell cancer. there are over 1.3 billion smokers worldwide, causing 6.4 million deaths and massive economic loss each year. Persons continue smoking, though aware that tobacco is harmful to their health. They are unaware of the toxic chemicals and cancer-promoting substances in tobacco. Flavor additives in cigarettes, which make them attractive, are more harmful. Incidence in lower middle income countries like ours tends to be higher due to abuse of tobacco, alcohol, bitter leaf and areca nut, poor dental and oral hygiene with undernourishment. Tobacco has a clear dose response relationship between its use and risk of oral cancer. In Southeast Asia, 90% of oral cancers are due to smoking and chewing habits. Epidemiological house-to-house survey to study oral precancer and cancer in over 1 lakh villagers in 5 districts of Pune in Maharashtra with 10-year follow-up revealed that 54% chewed tobacco with lime, smoked bidis, and used burnt tobacco or machere for cleaning teeth. 1.5% had leukoplakia and 0.3% submucous fibrosis. There was a strong association between bidi smoking and mixed habit of chewing tobacco. This survey revealed that it is feasible to follow up persons at high risk of cancer. Every patient of cancer had changes of pre-cancer, and 40% of pre-cancer could revert back. We can profitably prioritize our attention on oral pre-cancer rather than end up with only palliation of an obstinate cancer. Betel quid, with slaked lime, areca nut, tobacco, and commercially manufactured gutkha pan masala, is a common practice in our country with complete social acceptance. Most worrisome trend in last 2 decades is that high school and college students are being targeted by manufacturers of pan masala and gutkha by providing kiosks outside the schools and colleges. Pan masala contains crushed areca nut fermented or processed with sweeteners like cyclamates, sandalwood flavors, spices, condiments like cardamom, clove, camphor, amber, nutmeg, lime, catechu, and coloring agents. Gutkha contains chewing tobacco besides contents of pan masala. Gutkha, pan masala are packed in small aluminum foil pouches or sachets for ease of use by the students. These products are heavily advertised on television and mass media. Pan masala is Rs. 42,000 crore industry, has 200 brands, 4 lakh people associated with trade directly, and another 5 lakh indirectly. In one survey of 1,200 junior college students, 10% each use pan masala or gutkha. Survey of medical students in Bihar showed 12.5% regular gutkha users and 30% who occasionally use smokeless tobacco. 70% users of these products were under 35 years of age. In simple terms, users of both pan masala and gutkha are at a high risk to develop submucous fibrosis, leukoplakia, and cancer at a very young age. Trismus is restricted ability to open the mouth due to stiffening or fibrosis of the inner linings of the cheek, and oral cancer supervening on submucous fibrosis can cause severe cosmetic and functional morbidity. Urgent preventive measures are needed to protect these young lives by campaigns to educate students of the harmful effects of pan masala, gutkha, and tobacco. Medical wing of Brahma Kumaris Raj Yoga Education Research Foundation have trained 8,000 volunteers and campaigned against addiction in 19 states, bagging Maharashtra state awards for 4 consecutive years. We conducted public education on Defeat Cancer campaign on CARE TV, a healthcare channel, public education drive on cancer by holding regular camps. starting cancer support groups and longest distance health awareness campaign. Despite plethora of legislations, pan masala and gutkha are easily available, and pan masala is advertised heavily on television and mass media. Beginning with Cigarette Act 1975, Prevention and Control of Pollution Act, emphasizing smoking is air pollution. Motor Vehicles Act 1988 makes it illegal to smoke in public vehicle. Cable TV Network Amendment 2000 prohibits commercials on cable TV, and COTPA 2003 or cigarette and other products prohibition of advertisement 2003. But in practice, damage to health continues because tobacco, BDs and pan masala industries provide employment to a million workers and farmers, and government earns a large revenue from heavy tax on tobacco and tobacco products. Only option is health education and increasing regular annual checkup of high-risk groups. With availability of telemedicine and cameras in mobile telephones, it should be possible to prevent and downstage oral cancers. Supari, the small roasted and flavored pieces of areca nut in Maharashtra. Mawa, thin savings of areca nut, tobacco and slaked lime in Gujarat. And Mainpuri tobacco, with tobacco, finely cut areca nut, slaked lime, camphor and clover in Uttar Pradesh are widely used. Tobacco has carcinogens such as tobacco-specific nitrosamines, TSNA, and other contaminants. Chewing tobacco and moist snuff in USA and Sweden is associated with very low risks for oral cancers. Low risk may be influenced by the presence of cancer inhibitors like antioxidants in smokeless tobacco products in United States and Sweden. Tobacco is indeed used by many cultures in many parts of the world, including the Middle East, Europe, USA. Smokeless tobacco products in India are considerably different from those used in the West. For example, in India, individual farmers and small companies perform tobacco processing with little control over fermentation and curing. This increases the production of tobacco-specific nitrosamines. Tobacco is not homogeneous, but is combined with bitter leaf, sliced or powdered areca nut, and slaked lime, additives that enhance the toxicity as well as psychotropic effect of tobacco. Additionally, Indian users often smoke, have poor dental and oral hygiene, thus compounding the harmful effects of tobacco use. In USA, three distinct types of smokeless tobacco are used: chewing tobacco, moist snuff, and dry snuff. While moist snuff is practically only product used in Sweden, all of these products are held in the mouth, usually between the buccal mucosa and the gingiva. But they are distinctly different from each other with respect to the procedures used in their manufacture and the populations that consume them. Understanding of smokeless tobacco type is a prerequisite to an understanding of smokeless tobacco-associated oral cancers. American moist snuff is associated with minimal risk for oral cancer, while the use of Swedish moist snuff is associated with no demonstrable risk. Manufacturer of Swedish moist snuff adopted a voluntary standard for nitrosamines and other contaminants. It's called Gothetic Standard. Product information correlating levels of TSNAs and other contaminants with risk of oral cancer or any other disease is provided. There is a need to endorse the adoption of toxicity standards for smokeless tobacco products. Tobacco is an agricultural product, and the quality varies with the environmental conditions. Adoption of standards would promote achieving further contaminant reductions. standards may encourage the communication of factual information to consumers. They have a fundamental right to information about smokeless tobacco products, just as they have access to information about nutritional and toxic aspects of foods they consume. Purpose of sharing the facts and world data is to think what each one of us can contribute to solve or reduce these challenging issues. I would like to share with you a quote from Dr. Dennis Burkitt, a British surgeon. Diseases can rarely be eliminated through early diagnosis or good treatment, but prevention can eliminate disease. His advice is relevant in relation to prevention of oral, upper aerodigestive tract, lung and GI tract cancers. All of us can contribute immensely by being examples and counselors in preventing addiction to tobacco and alcohol. Burkitt was able to change the course of the medical thinking just by sheer observing and then reporting on the people he cared for in rural Africa. His major contribution came from his observation that diseases widespread in the Western countries, the Western world, such as coronary artery disease, adult onset diabetes mellitus, diverticulitis, appendicitis, gallstones, hemorrhoids, hiatus hernia, and constipation were absent in the third world. In 20 years of surgery in Africa, he had to remove gallbladder only once for a gallstone disease. While serving as head of the governmental health services of Uganda, he witnessed more than 10 million people flourish on grains and tubers, eating almost no meat, dairy products, or processed foods. On the basis of his conviction, he launched a worldwide crusade to change the diet in developed countries by recommending that Westerners mimic the food habits of his rural African patients. He wrote internationally best-selling book, Don't Forget Fiber in Your Diet, to help avoid many commonest diseases in UK and USA. This was in 1979. Dietary fiber is indigestible carbohydrate that is only present in plants. Proper diet, he recommended, was based on unrefined starches along with green and yellow leafy vegetables, fruits, and limited amounts of meat and dairy products. An enormous body of scientific research validated Burkitt's observations, and the list of dietary diseases expanded to include stroke, hypertension, osteoporosis, breast and prostate cancers, and a host of autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, lupus, multiple sclerosis. Medical wing of Rajyoga Education and Research Foundation and Brahma Kumaris have been in forefront of propagating lifestyle modifications by introducing diet, the vegetarian diet with plenty of fiber and adequate calories and balanced diet, exercise and Rajyoga meditation based on making mind peaceful and positive, based on the knowledge of the Self and the Supreme, for treatment of coronary artery disease and diabetes. We can act as counselors in preventing addiction to tobacco and alcohol. Being a doctor might mean more than treating the signs and symptoms of suffering patients with pills and surgeries. Common cancers could be prevented by modifying habits and social custom of offering pan supari in India and alcoholic drinks in the West, eating a high-fiber diet, exercise and meditation. Thank you and Om Shanti.
Shanti. I am Dr. Sachin Parab from Mumbai. I am giving my services in the field of addiction. since last 20 years, I'll be sharing my experiences of addiction seva and how lifestyle modification or Rajyoga meditation helps in quitting the addictions. Addiction, as we all know, is a chronic relapsing disorder. Both these two words are very important. It's a chronic and it's relapsing disorder. Many people find it hard to accept that, why it comes again and again. But we don't ask this question for chronic diseases like asthma, or diabetes, or hypertension, which are similar to addiction. If not treated, they relapse. Same is the case with addiction. We need to monitor it long and treat it well. Addiction, there are so many studies, so much of evidence of involvement of brain in addiction. Because it's a common belief, there are a lot of myths associated with addiction that it's a weakness of will, which is not the case. Now we have functional MRI studies and so many other studies, we conclusively tell us that in addiction, there is structural and functional changes in the brain. So addiction is a disease of brain and behavior also. As in we see in PSM, it is a triad of genetics, behavior and drugs, or addictive substance, nowadays behavior. They together, all of them react to produce a personality which is prone to addiction. We have data now that people with deficient D1, D2 receptor, that is dopamine receptor, are more prone to the addictions. So, addiction is no longer a weakness in character or a weakness of will, but it is biological and behavior disorder. Earlier, we used to use the word substance use disorder for tobacco, alcohol, and hard drugs and medicines for that matter. We have enough data about the tobacco. In fact, we have a national tobacco control program which are missing in alcohol and other hard drugs. I wish there was also a program for alcohol and drugs control. There is only awareness program which is going on through the Social Justice Department in India. But what we are seeing is alarmingly newer addictions we call behavioral addictions, which are popping up in this 21st century and increase during this lockdown period. And these addictions are digital addictions. I never thought that India would have internet de-addiction center. We started first in Delhi in 2014 and then subsequently in other cities like Pune and Bangalore. And nowadays I am seeing a lot of youth teenagers are trapped into these digital addictions. So we had already a challenge of tobacco and alcohol and hard drugs. But now we are having this one more challenge of behavioral addictions. The mechanism which is proposed of addiction is, there is an area in the brain we call mesolimbic cortex or reward center. And dopamine is the main culprit, although there are associated other neurotransmitters like glutamate and serotonin which are also affected. We see a lot of comorbidity in addictive people, a lot of mental disorders which can be associated with nicotine or other hard drugs addictions, or after having addiction, changes in the brain, and then we can see the minor or major psychiatric or neuropsychiatric disorders. But let's understand this mechanism so that we understand how meditation or other lifestyle modification interventions help in treating the addictions. dopamine is the neurotransmitter which is released when there is a exercise or when we are motivated to do something. It gives a feel good effect, and when a person uses dopamine, this mesolimbic cortex, that is ventral tegmental area, there are certain areas in the brain till pre-epilepsy, all of them that track dopamine is released and the person feels good. So some people call addiction as a dopamine deficiency disorders. Maybe this is the mechanism through which meditation helps, because meditation helps in increasing dopamine level and other neurotransmitters like serotonin and endorphin. That is what we have seen in our study. So this dopamine receptors, initially they good feeling, but later on this reward center is disrupted and person finds it's difficult to cope up with daily life's challenges. And that's what, when we define addiction, we say it has got 5C. Number one is craving, number two is continued use despite harmful consequences, whether it is on physical health, relationships, or threat from the police. So people are using it despite harmful consequences. Number three, as mentioned, it is chronic. Number four, it is a compulsory behavior. Compulsory behavior, person cannot stop it. So these are the 5 C's, which are the hallmark of addiction, and if the person stops these addictions or addictive behavior, then there is something known as withdrawal, and that is the big challenge. The word relapse in chronic relapsing disorder is precisely because of this. With certain intervention, person stops the addiction or addictive behavior for some time, but he or she falls back again to the original behavior because of the behavioral withdrawal symptoms which are disturbing, which could be disturbance in sleep or mood or appetite and so other things. I am consciously keeping the session precisely to the point because we want to focus it on the solutions of the addictions. So what is the solution? Well, it's a multi-pronged approach. But the good news is that any addiction, with my experience of 20 years, what I have seen is any addiction, number one, it is preventable. Our project of My India, Addiction Free India and Global Initiative of Tobacco Awareness, both are principally focusing on prevention. And we target the youth below 20 years, because we have conclusive data, even studies have shown that maximum addiction starts in the teenage, 12 to 17 years. So prevention is most important, where our major focus is on. And then those who want to quit the addictions, we help them through lifestyle modification and Raj Yoga meditation. So the approach to addictive personality, I always tell in my session, there is a stigma associated with addiction. And what we require is, we need to change our attitude towards the person and don't call that person as an addict. Actually, I do not like this word addiction. It's a disorder. So we have to see that person as an ill person. We say in spirituality, ill means I lack love. There is some deficiency, whether it is dopamine or the qualities of the souls like love or acceptance, which are missing. The childhood, there are certain issues which have happened in the childhood. So it's a big subject, but what I'm saying is not to use this word as an addict. Accept him or her as a person who needs help. So we need to change this attitude towards this person. Addiction is preventable. This is my first message in this session. Number two, addiction is treatable. I am very positive about addictive disorders, because in my 20 years, I have seen very difficult cases, resistant cases. They have been cured and they are sober, or they are without addictions. In fact, Brahma Kumari centers all over the Indian world. If you visit any center, you will find minimum 5 to 10 people at every big center who were hardcore addicts, but they have given addictions and they have quitted and they are sober till now. When I share this concept with the doctors, they find it difficult to accept this, how it is possible, because we have been taught that it relapses. Yes, we know that it relapses, but we have a data. In fact, we have a team of people like Dr. Avdesh Sharma, who is a very senior psychiatrist in India, and he is on global level. Dr. Banarsi Lal Sah, who is also a big person for the medical wing. And we had Dr. Valsalan Nair and myself. And under the guidance of our president, Dr. Ashok Mehta and Dr. Pratap Mehta, we did this study in India, where we collected the data of the people visiting Brahma Kumari Center, and we were shocked that most of the people, they have quit. And once they have quit, they have not started. But we wanted to confirm it through their families and the person itself. So we devised a form and we collected a data of around 1021 people. And we saw that most of them quitted, like 64% quitted in 1 month, which was very tough. And the relapse rate was just 3%, which was very high. And this study was published in Indian Journal of Psychiatry. And now internationally also we have presented the data. So that is very encouraging, that Raj Yoga meditation, which is not a meditation, but it's a lifestyle, because it's an attitude towards life. It involves a specific diet, high fiber diet, and then meditating morning and evening and keeping that positive outlook throughout the day. And we have seen that those who follow or adhere to Rajyogi lifestyle, which involves going to the local center daily, where they are given positive thought and positive environment with the practice of meditation, we have seen these people have quit addictions. We earlier thought it's an occasional case, one or few. Then we collected the data, we saw there are so many cases. And I have seen in my personal life these cases which have been treated, healed completely. Now there are people with 25 years remain sober, and it has been confirmed by the family members and the centers, the Brahma Kumari, they tell us, yes, he is sober, and the person we see a magical transformation. And these people have helped others. Like I know one person in Mumbai, where this person was having a cigarette, tobacco, alcohol, hard drugs addiction. He was in driving. You know, we all know drivers and cleaners, they are prone to addiction. But he quit addiction in 7 days of 22 years addiction. And now he has helped 70 people to quit addiction. It's a huge number. So they become leaders also when they quit addictions. And their family life health is also improving. So, my message to this short 20 minutes presentation is, addiction is preventable and treatable. But we need to accept that the treatment may last longer for certain people. But if the person follows up with Brahma Kumari's Raj Yoga meditation for quite some time, for some people it becomes difficult, but we need to give support. All rehab centers or psychiatrists in India, they are doing wonderful job. What we are saying is that with the traditional treatment, if we combine the Raj Yogi lifestyle, we will get a better result. There will be always some people who will be difficult to treat, but those who are ready to quit the addictions, Raj Yoga meditation is a very special boon to them, because it is freely available What I have seen the challenges in treating addicts is that they do not follow up or they do not get good counseling after they are discharged from the rehab center. See, when we keep them in rehab center, they are very good. The moment they come outside, they are surrounded by the same family members, same issues, same friends. I have seen many friends are waiting outside, all the peddlers who supply the drugs, they are waiting for these people to come outside. So we need to protect them till that brain changes happens, that chemical shift in the brain happens. I have seen in my practice, those who stick to Brahma Kumari's center for say 1 year or so continuously, their chances of relapse goes down considerably. And studies have shown that if a person has stayed sober or away from the drugs, then the chances of relapse are reduced to maximum level. These are studies have shown. So through this short presentation, I would like to give a message to all the doctors. Although we have been taught some medicine, how to treat, there are a lot of new drugs available for nicotine or alcohol or drugs for that matter. These alternative means of managing addiction goes a long way, and they are really helpful because they are freely available and there are no side effects. If done under the guidance of the experts who are teaching, we have these two projects running in India, My India Addiction Free India and Global Initiative of Tobacco Awareness. If any one of you is interested in joining these projects, we would be more than happy to involve you. And our main target, as I have mentioned earlier also, is youth. We have the maximum number of youth in India, even more than the China, and they are the future of our country, in fact the world. So if we can save them through certain preventive measures, our target is all those youth who are born after 2000, all of them must be saved, because there is an industry out there who wants to trap them. And we can protect them. So let's make this world a better place to live. Our vision is, let there be a golden age on this Bharat, our entire world. And addictions, we all know, typically alcohol and tobacco, they lead to many diseases, and cancer is one of them. Addictions, let it be in any stage, number one, it is 100% preventable. Number two, it is treatable if you follow regularly. We need not only treatment of the person who is suffering from this disorder, but also the family members, because they are also suffering. And it's a chronic relapsing disorder, so you need to follow with a longer time. And Raj Yoga meditation has proved to be of help to the addictive disorders. Thank you very much. Om Shanti.
Om Shanti. Prajapita Brahma Kumaris is a medical wing, Raj Yoga Education Research Foundation, RERF. आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स. आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें. राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live वो मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live. ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा. व्हाट्सएप 8619937031.
हम सब शांति चाहते हैं, मन में शांति, घर में शांति, विश्व में शांति, और इंतजार कर रहे हैं कि शांति मिलेगी जरूर. आपको क्या लगता है, शांति कहां से आनी